SBS हिंदी।
डॉक्टर शाह नमस्कार।
नमस्कार अनीता जी।
डॉक्टर शाह, ब्लड कैंसर इस समय ऑस्ट्रेलिया में तीसरा सबसे बड़ा कैंसर है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगले दशक तक इसकी पहचान 30% से बढ़ जाएगी, यानी डायग्नोसिस बढ़ जाएगी, तो चिंता का विषय तो है। ये क्यों बढ़ जाएगा, इसी पर बात करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले कुछ ब्लड कैंसर के बारे में ही बताएं, क्योंकि हम अलग अलग टर्म सुनते हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा वगैरह।
ब्लड कैंसर एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जिसके बारे में हमने कई बार सुना होता है। ल्यूकेमिया नाम काफी कॉमन है, पर कई बार हमें विजुलाइज नहीं होता कि ये क्या होता होगा, कहाँ होता होगा और इससे क्या सिम्टम्स होते होंगे। तो जैसे बात करें, मोटे तौर पर ब्लड कैंसर 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है जिसे कहते हैं ल्यूकीमिया, दूसरा होता है जिसे कहते हैं लिम्फोमा, और तीसरा होता है जिसे कहते हैं माइलोमा। ये तीनों ब्लड फॉर्म जहाँ होता है वहाँ के, या ब्लड जहाँ पर स्क्रीन होता है या बॉडी में जिस टेस्ट होता है, ये दोनों जगह में से कहीं पर पैदा होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें ल्यूकीमिया के बारे में, तो हमारे ब्लड में 3 प्रकार के सेल्स या कोष होते हैं। एक होते हैं व्हाइट सेल्स, जो इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के सामने फाइट करने के लिए जरूरी होते हैं, हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। दूसरे होते हैं रेड सेल्स, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं और हमारी एनर्जी के लिए जरूरी होते हैं। और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, जो जब हमें खून बहने लगे, तब जब क्लॉट फॉर्म होता है, खून बहना बंद हो, उसके लिए जरूरी होते हैं। ये सारे प्रकार के जो कोष होते हैं वो बनते हैं हमारे बोन मैरो में। तो हमारे जो बोन्स होते हैं, जैसे पेल्विस का बोन हो या लॉन्ग बोन्स, हमारे थाई के बोन हो, उसके अंदर एक सॉफ्ट पार्ट रहता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो, जिसके अंदर ये कोष बनते हैं। कई बार जरूरत से ज्यादा इनका ग्रोथ होने लगे, तब वो स्पिल ओवर होके ब्लड में वो व्हाइट सेल्स बढ़ जाते हैं और उसी को ल्यूकेमिया कहते हैं। और दूसरे प्रकार के जो ब्लड कैंसर है, जैसे हम लिम्फोमा कहते हैं, तो हमें अगर देखा जाए, जैसे हमें सोर थ्रोट होता है या थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, तब हमारे गले में कुछ गठान सी हो जाती है और नोड बन जाते हैं, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। हमारे बॉडी में एक काफी अच्छी सी सिस्टम है कि अगर कोई हैजार्डस थिंग अगर बॉडी में घुसने की कोशिश करे, तो हर एक जगह पर स्क्रीन होती है। तो एक टिश्यू में छोटे से वेसल्स होते हैं जिसे लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। कोई भी अगर इन्फेक्शन या बैड ट्यूमर्स बॉडी में अगर घुसने की कोशिश करे, तो पहले वो नोड में से उनको पास होना होता है। और अगर कोई भी हैजार्डस चीज लगे, तो वहां पर वो रुक जाता है और वो नोड है वो स्वेल हो जाते हैं। तो यूजुअली ये लिम्फ नोड में एक प्रकार के कोष होते हैं जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट्स, जो हमारे बॉडी के फाइटर सेल्स होते हैं। अगर वो भी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तो ये लिम्फ नोड्स बड़े होने लगते हैं। और जैसे मैंने बताया, नेक में तो लिम्फ नोड होते हैं, वैसे ये लिम्फ नोड बॉडी के अंदर भी होते हैं, चेस्ट के अंदर, हमारे एब्डोमेन के अंदर, और हमारे ग्रोइन में, आर्मपिट में, सभी जगह पर ये लिम्फ नोड होते हैं। जब तक वो नॉर्मल साइज के होते हैं, तो हम उसे फील नहीं कर पाते, उससे कोई हमें कोई सिम्टम नहीं होते। पर जब ये बढ़ जाते हैं आइदर इन्फेक्शन से या फिर लिम्फोसाइट का ट्यूमर होने से, तब वो काफी बड़े लंप बन जाते हैं। तो ऐसे जो लंपी ट्यूमर रहते हैं, उसे हम लिम्फोमा कहते हैं। और जो ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा कोष बनने के कारण जो ट्यूमर रहता है, उसे एक प्रकार का लिक्विड कैंसर कहते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा सा लंप नहीं होता, पर ब्लड में सेल्स बढ़ जाते हैं, तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। और एक अलग प्रकार के व्हाइट सेल जब बोन मैरो में बढ़ जाते हैं, तो उससे माइलोमा नाम का भी एक कैंसर होता है। तो एसेंशियली लिक्विड कैंसर इज ल्यूकीमिया, और अगर सॉलिड लंपी कैंसर है, तो लिम्फोमा कहते हैं।
जी, आजकल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है?
इसके लिए काफी तर्क लगाए जा रहे हैं कि जब भी किसी कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं। एक होता है कि रियल उसके केसेस बढ़ रहे हो, दूसरा उसका डिटेक्शन बढ़ रहा हो, जैसे केसेस पहले भी होते हो और उसका डायग्नोसिस अर्ली ना हो, या उसका निदान ही ना होता तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि इतने केसेस है, ये भी हो सकता है। पर जब रियल केसेस का नंबर बढ़ना शुरू होता है, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसके कॉजेटिव फैक्टर, कोई लाइफस्टाइल फैक्टर के कारण बढ़ रहे हैं या कोई एनवायरमेंटल एक्सपोजर के कारण बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ कैंसर होते हैं जो रेडिएशन से बढ़ते हो, प्रेशर लगता है कि क्या हम ज्यादा रेडिएशन हमें हो रहा है उसके कारण कैंसर बढ़ रहे हैं, और कई बार वर्क रिलेटेड एक्सपोजर होते हैं, केमिकल एक्सपोजर। कुछ केमिकल्स हम जानते हैं जिससे कि कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं और ल्यूकेमिया कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं, और कुछ जैसे डायग्नोसिस के लिए रेडिएशन किया गया हो या ट्रीटमेंट के अलग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन या कीमोथेरेपी दी गई हो, तो कुछ कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी ल्यूकेमिया कैंसर या लिम्फोमा कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। तो बहुत सारे तर्क लगाए जा रहे हैं कि कुछ ट्रीटमेंट से या फिर वर्क रिलेटेड एक्सपोजर से, जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं फार्मिंग में, उससे भी कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं।
अच्छा।
तो ये सारी अभी पॉसिबिलिटीज है जिसके बारे में ज्यादा जांच और रिसर्च हो रही है। वी माइट कम टू नो कि इट मस्ट बी मल्टीफैक्टोरियल, एक से ज्यादा कारण से ये हो सकता है।
जी डॉक्टर शाह, ब्लड कैंसर के बारे में जागरूकता की बात तो हो ही रही है, उम्र के साथ भी क्या कहीं ये जुड़ जाता है?
ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि महत्तर जो कैंसर होते हैं वो ओल्ड एज के डिसीज है, वो 60-65 के बाद में होने वाले डिसीज है। ये जानना जरूरी है कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो चाइल्डहुड में ज्यादा होते हैं। हमारे दिमाग में कैंसर जब शब्द आता है तो हमें बड़े बुजुर्ग का ध्यान आता है, बच्चों का हम कभी सोचते नहीं। पर ये ल्यूकीमिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसके दो मुख्य प्रकार ये होते हैं, अक्यूट ल्यूकीमिया और क्रोनिक ल्यूकीमिया। अक्यूट ल्यूकीमिया जिसमें बहुत जल्दी से कोर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसका कोर्स काफी अग्रेसिव होता है, और इस प्रकार के अक्यूट ल्यूकीमिया यूजुअली बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं।
अच्छा।
और पर इसमें द सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस डार्क क्लाउड इज के बड़े तौर पर सारे चाइल्डहुड ल्यूकीमिया अभी क्योर हो सकते हैं, एज फार एज वी लिसन टू अर्ली साइंस, उसका डायग्नोसिस अच्छे से हो जाए, तो मोटे तौर पर सारे अक्यूट ल्यूकीमिया को हम अच्छे से क्योर कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म रेमिशन में जा सकते हैं। तो ये चाइल्डहुड में भी होते हैं। दूसरे टाइप के जो ल्यूकीमिया होता है वो है क्रोनिक ल्यूकीमिया, जो उसमें कोष धीरे से ओवर मंथ्स टू इयर्स बढ़ना शुरू होते हैं, सिम्टम्स भी बहुत सटल होते हैं। कई बार वो रूटीन ब्लड टेस्ट हम किसी और कारण से करवाए, जैसे वंस अ ईयर हेल्थ चेक करवाते हैं, उसमें ब्लड टेस्ट में कई बार मालूम पड़े, ऐसे मालूम पड़ता है। और कई बार ये ल्यूकीमिया में ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं रहती, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें और जिस लेवल पर ऐसा लगे कि अभी इसे तकलीफ होनी शुरू हो सकती है उस टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है।
जी आपने सिम्टम्स की बात की, तो कुछ जानकारी दे सकेंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं?
तो दो प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। एक, अगर जब ब्लड में सेल्स एक ही प्रकार के सेल्स बढ़ने लगे, तो बाकी के जैसे मैंने बताया कि तीन प्रकार के कोष होते हैं ब्लड में, तो दूसरे प्रकार के कोष बनना कम हो जाता है, क्योंकि बोन मैरो की सारी मशीनरी एक ही प्रकार के सेल बनाने में लग जाती है। तो जैसे रेड सेल्स है या प्लेटलेट्स है वो इतने नहीं बनते, तो उसके कारण जो सिम्टम होते हैं वो जैसे रेड सेल्स कम हुए जिसे हम अनीमिया कहते हैं, तो थकान ज्यादा लगना यूजुअल से, तो ये उसका काम एक कॉमन सिम्टम रहता है। दूसरा, अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो जैसे हम कहीं चोट लग जाए तो ब्रूज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि छोटे से ब्रूज रहते हैं जिसमें स्किन का कलर बदल जाता है, वो लंबे टाइम तक रहे और बहुत बड़े से ब्रूज होने लगे, या अगर कट लगे स्किन में तो वो अच्छे से उसका खून बहना बंद ना हो, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। कई बार जैसे हम यूजुअल सिंपल ब्रश करते हो और अनयूजुअली लार्ज ब्लीडिंग होने लगे गम में से या नोज में से, तो ये सारे जो होते हैं वो कॉमन सिम्टम रहते हैं, जैसे थकान ज्यादा लगना, खून ज्यादा बहना, बड़े से ब्रूज होना। और जैसे लिम्फोमा के बारे में बताया कि हमें लंप नेक में या आर्मपिट में या ग्रोइन में होने लगे, और वो यूजुअली इन्फेक्शन वाले जो लंप होते हैं वो एक दो हफ्ते में सेटल हो जाते हैं, पर ये दो हफ्ते से ज्यादा अगर लंप रहता है तो डेफिनेटली इट इज वर्थ शोइंग टू योर जीपी कि इसमें मुझे ज्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि नहीं। और तीसरा ये होता है कि कई बार ल्यूकीमिया लिम्फोमा में लोगों को पसीना छूटना शुरू हो जाता है, जैसे बुखार ना हो फिर भी पसीना छूटने लगे।
अच्छा।
और कई बार वो रात के टाइम पर ज्यादा होता है, जिसे नाइट स्वेट्स भी कहते हैं, तो कई बार वही पहला सिम्टम होता है कि अनयूजुअल स्वेटिंग होने लगे, और कुछ बार हल्का सा बुखार जैसा, जैसे कहते हैं कि हड्डी का बुखार है, बोन फीवर ऐसा फील होता है, जैसे हल्का सा बुखार रहता हो ऐसा फील है लंबे टाइम तक। तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स है अगर इसमें अगर दो तीन हफ्ते से ज्यादा इस प्रकार के सिम्टम रहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने जीपी से यूजुअली सबसे पहले बताएं, जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जरूर हो तो ब्लड टेस्ट करेंगे या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उससे हमें जल्दी मालूम पड़ सकता है। तो काफी प्रकार के लिम्फोमा और ल्यूकेमिया हम लॉन्ग टर्म तक आइदर कंट्रोल में रख सकते हैं या क्योर कर सकते हैं।
जी, विस्तृत जानकारी आपने दी है ब्लड कैंसर के बारे में, और साथ में ये कि नियमानुसार अगर ब्लड टेस्ट कराते रहें और उसमें कुछ परिवर्तन आएगा तो भी पता चलने की बात हो जाती है।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसके ल्यूकेमिया के डायग्नोसिस के लिए कोई हमें एक्सपेंसिव या फैंसी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। जो वंस ए ईयर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं रूटीन चेकअप के लिए, उन सब में ब्लड काउंट्स हम चेक करते हैं, और ल्यूकेमिया में इमीडिएटली आपके ब्लड काउंट्स अलग दिखेंगे, जैसे व्हाइट सेल बढ़ गया हो या रेड सेल या प्लेटलेट्स कम हो गया हो, बहुत इजी से पिकअप हो जाता है। तो वो सिंपल है। और लिम्फोमा के लिए कई बार हमें स्कैन करवाने की जरूरत पड़ती है, जैसे सीटी स्कैन या पेट स्कैन, इस प्रकार के स्कैन होते हैं, तो ये जरूरत पड़ सकती है। पर अगर ये सिम्टम के लिए अर्ली मेडिकल अटेंशन दिया जाए तो डायग्नोसिस उसका काफी इजीली हो सकता है और उसकी ट्रीटमेंट भी काफी अच्छे से हो सकती है।
जी डॉक्टर शाह, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छी तरह से पूरी विस्तृत जानकारी दी है जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।
थैंक यू अनिता जी।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।